तफसीर, आप देखिए कि अल्लाह के सामने इंसान खड़ा है और इंसान के जिस्म के अज़ा और खास तौर पर जिल्दें उसके खिलाफ गवाही दे रही हैं, और इंसान हैरान परेशान है और कह रहा है कि तुम मेरे खिलाफ जो है वो क्यों गवाही दे रही हो। और वो हैरान है इस बात पर कि वो ये समझता नहीं था कि मेरे जिस्म के अज़ा भी मेरे खिलाफ गवाही दे सकते हैं, मेरी जिल्द ही मेरे खिलाफ गवाही दे सकती है। और दूसरा क्या, अल्लाह के बारे में उसको ये गुमान था कि अल्लाह सुनता ही नहीं है, जानता ही नहीं है और हिसाब किताब होगा ही नहीं। तो लेकिन अब क्या है कि इंसान चाहेगा कि किसी तरह जो है वो माजरत करे, राजी करे, तौबा करे, चांस मांगे और जो है वो अल्लाह को जो है वो मना ले। तो लेकिन अब जो है वो मना नहीं सकेगा। अब इसके बाद आप देखिए कि आयत नंबर 25 से लेकर 36 तक एक खास मजमून बयान हुआ है, और उसमें क्या है कि कुफार के जितने भी सरदार थे ना, जो कुफर के सरगने, उनकी आपस में बड़ी गहरी दोस्ती थी, बड़ा गठजोड़ था। और दुनिया में ऐसे ही होता है कि जो बुरे लोग होते हैं उनकी बड़ी गहरी दोस्ती होती है और नेक लोगों की आपस में दोस्ती होती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं वकैयदना, और हमने मुकर्रर कर दिया, और हमने चस्पा कर दिया, और हमने साथ लगा दिया। तो ये जो लफ्ज है ना कैयदना, ये काफ या दुआत से है, काफ या दुआत मस्दर है। काफ या दुआत अंडे के ऊपर वाले छिलके को कहते हैं, अंडे का जो ऊपर का छिलका जो खुश्क होता है उसके ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखें अंडे के छिलके के साथ क्या लगा हुआ होता है, एक झिल्ली होती है। तो झिल्ली जो है वो अंडे के छिलके के साथ चिपकी हुई होती है, या अंदर जो अंडे का हिस्सा है उससे चिपकी हुई होती है, ये छिलके के साथ चिपकी होती है, बिल्कुल साथ जुड़ी हुई होती है ना। तो इससे आप तसव्वुर करें जरा कि जिस तरह झिल्ली और छिलका आपस में जुड़े हुए हैं, या छिलके के साथ वो आगे का अंदर का जो अंडे का हिस्सा है वो अंदर बिल्कुल जुड़ा हुआ है। वकैयदना, और हमने जो है वो साथ लगा दिया है, और हमने चस्पा कर दिया है, और हमने मुकर्रर कर दिया है। लहम, इनके लिए, कुराना, आ कुराना को। और कुराना जो है आप पढ़ चुकी हैं, ये करीम की जमा है, रूट काफ रा नून है, और उस रस्सी को कहते हैं जिससे दो ऊंट बांधे जाते हैं। अब एक रस्सी में जब दो ऊंट बांध दिए जाते हैं तो वो दोस्त बन जाते हैं, एक रस्सी के साथ उनको जोता जाता है, एक रस्सी के साथ जैसे वो एक हमसर एक साथी नहीं बन जाते, एक उनको कर दिया जाता है। तो रस्सी ने उन दोनों को जोड़ दिया। तो इसी से करीन का लफ्ज जो है ये साथी के लिए आता है। कौन सा साथी, जो बहादुरी, कुव्वत और दीगर औसाफ में इसका हमसर हो। और अमूमन करीन का लफ्ज किस लिए आता है, बुरे मानी में आता है। अमूमन ये लफ्ज इसका इस्तेमाल बुरे मानी में होता है। और बुरे लोग क्या करते हैं कि अल्लाह को भूलकर बदअमालियों में लग जाते हैं। और क्यों ऐसा होता है, वकैयदना लहुम कुरना, अल्लाह रब्बुल इज्जत बता रहे हैं, और मुकर्रर किया हमने और चस्पा कर दिया, जैसे अंडे के छिलके के साथ झिल्ली लगी हुई होती है ना, इस तरह इनके साथ लग जाते हैं इनके लिए कुराना, इनके बुरे दोस्त। फजय्यनु लहुम लहुम, फिर क्या करते हैं वो, फजय्यनु लहुम, बस खूबसूरत बनाया उन्होंने, जो खूबसूरत दोस्त थे उन्होंने खूबसूरत बना दिया। मा बैना ऐदीहिम व मा खल्फहुम, उनके लिए बैना दरमियान, ऐदीम दोनों हाथों के, मुराद क्या आगे, जो कुछ उनके आगे था उसको भी खूबसूरत बनाकर पेश किया, व मा खल्फहुम, और जो उनके पीछे था। तो ये आगे और पीछे क्या है, तो मा बैना ऐदीहिम से मुराद ये है ख्वाहिशात का इत्तबा, दुनिया के अमूर, दुनिया के जो भी मामलात थे, क्योंकि हाथ के आगे क्या है, इंसान के सामने क्या है, दुनिया। तो दुनिया इंसान को बड़ी खूबसूरत नजर आती है, दुनिया बड़ी बेहतरीन नजर आती है, बड़ी चमक दमक वाली नजर आती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहे हैं कि वो जो बुरे दोस्त थे इन्होंने क्या किया, इनके साथ लगे हुए हैं, जो चीज हर वक्त साथ हो साए की तरह, तो वो क्या करती है कि कुफर को, मासी को, गुनाहों को, क्या क्या करती है कि बुराइयों को खूबसूरत बनाकर पेश करती है, और फिर इंसान क्या करता है, गुमराही की दलदल में फंस जाता है। मसलन मैं आपके सामने एक मिसाल रखती हूँ कि मसलन चोरों डाकुओं का अगर एक ग्रोह है, अब क्या है कि एक चोर है तो उसको दूसरा चोर तो चाहिए ना, एक डाकू है उसने डाका डालना है, उसको एक ग्रुप चाहिए ना, तो क्या करता है कि वो अपने साथ वालों को जब तैयार करता है तो अपनी चोरी की कहानियां जो है ना, चोरी की भी होती है, डाका डाला हुआ होता है, लेकिन बहादुरी कि ऐसे फिर मैंने किया, फिर किसी को कत्ल कर देता है, लेकिन कत्ल की दास्तान को भी बहादुरी की दास्तान बनाकर पेश करता है तो उसका बुरा अमल ना, चोरी डाका कत्लो गारत। अब आप देखें कि गुनाहे कबीरा किए हैं उसने, गुनाहे कबीरा किए हैं, लेकिन इसके साथ क्या है कि दूसरों के सामने जब वो अपनी ये चोरी डाके की बातें करता है तो फिर क्या करता है कि बड़े जैसे बहादुरी के कारनामे और कैसे मैंने किया। अब क्या है कि अब जो दूसरा साथी होता है उसका, वो नहीं करना चाहता, अभी नहीं करना चाहता है, वो बुरा इसलिए बुरे को साथी बनाया, लेकिन ये कि करना नहीं चाहता, वो डरता है, तो कहते लो भी अब तुम इतने डरपोक क्यों बन दो, वैसे तुम बड़े बहादुर, बहादुरी दिखाओ भाई बहादुरी, मैं कितना बहादुर हूं, तो उसको थपकी देता है। अब उसका जो डर है अब उसको खूबसूरत बनाकर पेश करता है कि तुम बहादुर बनो और देखो कितनी जल्दी मालदार हो जाओगे, रातों रात तुम अमीर कबीर बन जाओगे, और फिर ये और फिर ये और फिर ये बहुत से सब्ज बाग उनको जो है वो दिखाता है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये लोग जिनके अमाल ने उनके खिलाफ गवाही दी, उनके जिस्म के अज़ा ने उनके खिलाफ गवाही दी, और जो अल्लाह को राजी नहीं कर सकेंगे, जो अल्लाह को मना नहीं सकेंगे, क्योंकि उनकी माफी उनका उजर उस वक्त कबूल नहीं किया जाएगा, तो ऐसा क्यों होगा, इसलिए होगा, इसकी एक बड़ी वजह यह है कि उनके हमनशीन बुरे थे, उनके करीन बुरे थे। अच्छा यहां पर एक और बात भी आप याद रखिएगा कि क्या बात पता चल रही है कि बुरे लोगों के दोस्त बुरे होते हैं, अच्छे लोगों के दोस्त अच्छे होते हैं, और याद रखें और आप इस दुनिया में इसका मुशाहिदा करके देख लें कि जहां पे गंदगी होती है वहां पे मक्खियां आकर भिन भिनाना शुरू कर देती हैं, जहां पे सफाई सुथराई होती है वहां पे मक्खियां नहीं आती, है ना। तो जो बुराई, जो फितरत लोग होते हैं, बुराई पसंद लोग होते हैं, वही जो है वो बुरे लोगों के गहरे दोस्त बन जाते हैं। मसलन बाज लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा था लेकिन उसको साथी बुरे मिल गए, या वो क्या कहते हैं मैं तो बहुत अच्छी थी, मैं तो बहुत अच्छा था लेकिन उसको दोस्त अच्छे नहीं मिले, या बाज लोग कहते हैं कि मेरी बेटी तो बहुत अच्छी थी शौहर अच्छा नहीं मिला, और बाज कहते हैं बेटा बहुत अच्छा था बीवी अच्छी नहीं मिली। तो लोग क्या करते हैं कि अपनी बुराई का सेहरा और ताज जो है वो दूसरों के सर पर रखना चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि दो ही सूरतें हैं, दो ही सूरतें हैं, और वो क्या हैं कि जो अच्छा होता है ना, अगर वो बुरों से दोस्ती करता है तो उसको भी अच्छा बना लेता है ना, क्या करता है कि अगर वो बुरे दोस्तों में चला गया, बुरी जगह पे रहने लग गया, लेकिन अब क्या है उसका हुस्न सलूक जो है उनको अच्छाई पर मजबूर कर देता है ना। मैं आपको मिसालों से बताती हूं। और दूसरी बात वो क्या करते हैं, या फिर ये है कि वो उन बुरे दोस्तों को छोड़ देते हैं, वो बुरी सोहबत में सांस नहीं ले सकते, जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। मसलन आपको अल्लाह ने दीन का शऊर दे दिया, आप किसी ऐसी जगह चली जाती हैं, ऐसी महफिल में नाच गाना हो रहा है, बुराई हो रही है, तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, फौरन वहां से उठना चाहेंगी। या फिर अगर मजबूरी से आप बैठी हुई हैं, शौहर के साथ है या शौहर बीवी के साथ है, मजबूरी से आया हुआ है, तो चेहरे से नागवारी के आसार नजर आते हैं, दिल नहीं लग रहा, लोग हंस रहे हैं खेल रहे हैं, आप कहीं और ही हैं, दिल नहीं लगता ऐसी जगह पे, पूजा ये कि उसको मुस्तकिल तौर पे उस महफिल को इख्तियार कर लिया जाए, तो ऐसा नहीं होता। अब आप देख लें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द कितने बुरे लोग थे, वो यहूदन औरत कूड़ा फेंका करती थी, है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए गए तो वो तो ईमान ले आई, है ना। ये मिसाल अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की, ये मिसाल बड़ी खूबसूरत है कि अब्दुल्ला बिन मुबारक भी बहुत नेकियां करने वाले थे, है ना, कि एक सराय में जाकर रुका करते थे, वहां एक लड़का था जो उनकी खिदमत किया करता था। और एक दफा जब फिर कहीं सफर पर गए तो था वो लड़का, जब वापस आए तो था नहीं। और इसका निचोड़ मैं कहानी का आपको बता रही हूँ, तफसीली कहानी है वैसे। तो उसमें क्या है, पूछा कहाँ गए, कहा कि वो जेल में है। और अब जो है वो पता कर करा के उस तक पहुंचे, और फिर जो है वो जो जेल वाला था जेलर, उसको कहा कि भी क्यों जेल में, बताया गया कि इसने किसी का कर्जा देना था या जो भी वजुहत थी, तो इतने पैसे थे किसी के देने के जो इसने नहीं दिए, तो उसने उसको जेल में डलवा दिया ना। तो अब क्या हुआ कि जेल वाले को वो पैसे दे के और कहा कि बताना नहीं है ये मैंने दिए हैं, और फिर वहां से आ गए। अब आप देख लें कि कैसे नेकी की और कैसे उसको जो है वो उस जेल से जो है वो छुटकारा दिलाया। एक और बुजुर्ग के बारे में आता है कि उनके साथ वाले घर में आतिशपरस्त लोग रहते थे, और उनका जो आतिशपरस्त थे वो आदमी मजूसी आदमी कहीं गया हुआ था, पीछे से आग की वो पूजा करते थे, बीवी थी और एक लड़का था। अब क्या हुआ कि आग बुझ गई और वो बहुत परेशान थे, आग बुझ गई, अब क्या किया जाए, मियां घर नहीं है। इनको किस पता चला, हमसाए में थे, पता चला अपना आग का जो चिराग था, लैंप था, जो अपने घर में था, अपने घर में अंधेरा कर दिया, लेकिन उनके घर में जाकर खामोशी से लैंप उनके घर के आगे अंदर करके तो फिर वापस आ गए ना। जब वो मजूसी वापस आया, इतना वो हैरान हुआ और इतना वो खुश हुआ और मुसलमान हो गया। इसी तरह अब्दुल्ला बिन मुबारक या किसी बुजुर्ग का जो है वो, ये भी मशहूर वाकया है कि वो तो नेकी का काम करते, जिक्र करते, और साथ जो था एक मोची था जो डांस गाना बजाना और बुरी महफिल लगा लेता, और रात के वक्त जो है वो खूब शोर शराबा करता। और एक दिन क्या हुआ कि शराब में भी पीता था, नशा भी करता था, तो उसको जाकर लोगों ने जेल में डाल दिया। पता चला अब रात को बुजुर्ग इबादत के लिए उठे, अब शोर की नाच गाने की आवाज नहीं आई, ये नहीं कहा कि शुक्र है दफा हो मर गया होगा। मैं सोचती थी मैं उस जगह होती तो क्या करती, कि शुक्र है सुकून की 2 घड़ियां ना, ऐसे सोचते हैं ना। अच्छा ऐसे नहीं कहा कि सुबह उठे तो पता किया कि क्या बात है कि रात नाच गाने की आवाज नहीं आई, पता चला कि वो तो जेल में है। फौरन जो है ना वो वहां पहुंचे, और वो जो जेलर वगैरह जो इंतजामिया थी बड़ी मुतासिर और बड़ी हैरान कि आप क्यों आए, हमें घर बैठे बताते आपको क्या हाजत थी। तो कहा कि उसकी सिफारिश के लिए आया हूँ कि मेरा पड़ोसी है और रात भर उसने जेल में गुजारी है और मुझे ये सुनकर बड़ी तकलीफ हुई है, तो मैं चाहता हूँ उसको आजाद कर दिया जाए। तो अब जो है वो फौरन उसको आजाद कर दिया गया। अब वो अब जब वो आजाद खुद घर आ गए सिफारिश करके, तो उन्होंने कहा आप हमें सिर्फ घर बैठ कर भी पैगाम देते ना तो हम उसको छोड़ देते। और बड़े हैरान कि इतना खराब आदमी, कहा इतने खराब आदमी की आप सिफारिश करने के लिए आए, कहा कि मेरा पड़ोसी है तो तकलीफ में है। अब वो शख्स जब आजाद हुआ तो पता किया लोगों से कि मुझे तो, मैं तो जेल में मुझे डलवा दिया था फलां फलां ने, अब मुझे रिहा किसने कराया, तो पता चला कि पड़ोसी ने। उसी वक्त उनके घर आया, आपका दरवाजा नॉक किया और कहा कि मैं जो है वो आपका मुरीद बनना चाहता हूँ, मैं जो है वो आप जो बातें कहते थे अब मैं वो करना चाहता हूँ। उसने सारी जिंदगी के लिए वो रक्सो सुरूज शराब की महफिल से तौबा कर ली। तो ये क्या है कि नेक लोगों की सोबत ने जो है वो क्या किया कि बुराई करने वालों को नेकी पर मजबूर कर दिया। रसूल अल्लाह की जिंदगी की बेशुमार मिसालें हैं। वो बुढ़िया जिसका कूड़ा लेके आप जिसका सामान लेके जा रहे थे, उसने कहा ऐसे जादूगर पर तो मैं ईमान लाई, है ना। और भी बेशुमार मिसालें आप ढूंढिएगा। तो बहरहाल बात क्या है कि अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि हमने इन पर कुछ जो है वो करीन को मुसल्लत कर दिया है, चस्पा कर दिया है। وَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ, जो आगे से और पीछे से इनके सारे काम खुशनुमा करके दिखाते हैं। तो याद रखिएगा कि कभी भी अपनी बुराई का इल्जाम दूसरों पर नहीं धरना चाहिए। बीबी आसिया का किरदार मैं हमेशा मुझे बहुत ही भाता है कि फिरौन जैसे बुरे तरीन शख्स के घर में रहकर अगर वो अपने ईमान की हिफाजत कर सकती है और मोमिना बन सकती है और रब इब्न ली इंदा का बैतन फिल जन्ना, जन्नत में घर बना सकती है, तो फिर मैं और आप क्यों नहीं। तो असल बात क्या है कि उसको आग नहीं कहते, आग के अंदर दो खासियतें होती हैं, खुद वो गर्म होती है और जलती है, और जिस जगह उसको रख दिया जाए उसको गर्म कर देती है और जला देती है। बर्फ के अंदर दो खासियतें होती हैं, खुद ठंडी होती है और जिस जगह उसको रख दे उसको ठंडा कर देती है। तो मोमिन और मुस्लिम के अंदर दो खासियतें होनी चाहिए कि खुद ईमान लाने वाला होता है, उसके अंदर एक तड़प होती है और जिस जगह चला जाता है उसको तड़पा देता है, तड़प पारे की तरह होता है। खुद वो अताब गुजार होता है, जिस जगह जाता है जमीन कायनात हवाएं फिजाएं हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, तो क्या करता है रंग बदल देता है, रुख बदल देता है, पैमाने तोड़ देता है, जाम शराब के बहा देता है, लुंढा देता है और फिर महफिलों की महफिलें जो है उनका रंग बदल जाता है। सुफयान सूरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि आप जो थे ये बगदाद वगैरह के इलाके में थे, तो आप जब गए उस इलाके में तो क्या था कि वहां के लोग जो थे उस इलाके के वहां पे जैसे दौलत के बड़े पुजारी थे, तो जब आप गए तो इल्म की बहुतात हो गई, समझ आई बात की, इल्म की बहुतात हो गई। वलीद ये बनू मैया का बहुत बड़ा हुक्मरान गुजरा है, ये औरतों का दिलदादा था और इमारतों का दिलदादा था। तो इसके जमाने में लोग जब मिलते थे ना आपस में, या तो औरत पर बात करते थे या फिर इमारत पर बात करते थे। तो असल बात क्या है कि जैसे लोग होंगे वैसी महफिलें लगनी शुरू हो जाएंगी, जैसे खवास होंगे वैसी आवाम हो जाएगी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बारे के जमाने में जो है वो तकवा और आखिरत की फिक्र का बड़ा काम हुआ है, बहुत जलीलुल कदर काम आपने किया है, काबिले कदर काम किया है। तो करीम क्या है कि आदमी का किरदार अपने दोस्तों से पहचाना जाता है। तो अल्लाह ताला ये बता रहे हैं वकैयदना लहुम कुरना, हमने मुसल्लत कर दिया इन पर बुरे दोस्तों को, फजैयनहुम लहुम, जिन्होंने मुजैन कर दिया इनके लिए, आरास्ता किया इनके लिए, खूबसूरत बनाया जाहिरी तौर पर भी मानवी तौर पर भी, मा बैना अयदीहिम वमा खल्फहुम, के जिन्होंने जो है जो कुछ इनके हाथों के सामने था यानी ख्वाहिशात दुनिया के काम उसको खूबसूरत बनाकर दिखाया, हलाल हराम की तमीज खत्म कर दी, फराइज वाजिबात की फिक्र खत्म कर दी, दुनिया ही को कहा कि बस यही जीना है, व मा खल्फहुम से मुराद आखरत फरामोशी, वहक्का अलैहिमुल कौलू, और सच हो गया इनके बारे में कौल, फी उममिन, उम्मत की जमा है उमम, और इसके मानी क्या है, और इनके हक में भी अल्लाह का कॉल जो था वो इसी तरह सच साबित हुआ जैसे दूसरी उम्मतों के बारे में। कौन सी उम्मतें, कद खलत मिन कबलहिम, जो इनसे पहले गुजर चुकी थी, मिनल जिन्नी वल इंसी, इंसानों की और जिन्नों की। तो जिन्नों और इंसानों की जो कौमें पहले गुजर चुकी थी उनके बारे में अल्लाह का जो कॉल था वो कॉल इनके बारे में भी सच साबित हुआ, और वो कॉल किस चीज का था, अजाब का कॉल, कि जब कोई कौम जो है वो अल्लाह का इनकार करती है तो फिर होता क्या है कि अल्लाह ताला उसको जो है वो तबाहो बर्बाद करके रख देता है, फिर अल्लाह ताला उसको मिटा देता है। और अल्लाह का कॉल क्या है, ये तो है ना कि दुनिया में अल्लाह का अजाब आए या फिर आखरत में अल्लाह का अजाब आएगा, है ना। तो जो बुरे लोग होते हैं ना, तो ये भी अल्लाह का कॉल है कि अल्लाह ताला बुरे लोगों के साथ बुरे दोस्त फिर उनको दे देता है, बुरे दोस्त उनके साथ चश्मा कर देता है। वमन याशु अन जिक्री रहमानी मुकैद लहू शैतानन फहुवा लहू करीम, सूरत ज़ुख़रुफ़। समझ आ गई बात की, कि एक तो उससे मुराद ये हो सकता है कि जो बुराई चाहता है फिर अल्लाह ताला वो बुराई के रास्ते उसके लिए आसान कर देते हैं, बुरे दोस्त उसके साथ लगा देते हैं। समझ आई बात की इसकी, है ना। आपको ये बात मैंने पहले भी कई दफा बताई है कि अल्लाह ताला कहते हैं जैसे हदीसे कुर्सी है ना, कि जो मेरी तरफ चलता है मैं उसकी तरफ दौड़ता हूँ, जो मेरी तरफ एक हाथ आता है मैं उसकी तरफ 10 हाथ आता हूँ, जो मेरी तरफ चल कर आता है मैं उसकी तरफ भाग कर आता हूँ। तो जैसा बंदा चाहता है वैसे ही मैं उसके लिए आसानियां फराहम कर देता हूँ, जो हदायत चाहता है उसको मैं हदायत देता हूँ, जो हदायत नहीं चाहता मेरी हदायत जो है ये बिन मांगे नहीं है, मांगने वालों को दी जाती है ना। तो जो हदायत नहीं चाहता, बुरी हमनशीनी बुरी बुरी बातें बुरे अमल चाहता है, तो मैं बुरे हम नशी उसको दे देता हूँ, मुकद्दर कर दिए बुरे दोस्त उसके लिए। दूसरे इसके फिर मानी क्या है कि मैंने उसके लिए अजाब मुसल्लत कर दिया। दुनिया में भी और आखिरत में भी। आखिरत में क्या है, लअमलअन्ना जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमाइन। सूरत हूद रुकू 10 में आप ये आयत पढ़ चुकी हैं कि मैं जिनों और इंसानों को फिर ऐसे लोगों से जो है वो भर दूंगा। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि जैसे दूसरी कौमों के बारे में मेरा कौल जो है वो सच साबित हो चुका है कि दुनिया में भी उनकी ख्वाहिशात को फिर खूबसूरत बनाकर दिखा दिया गया, तो इसी तरह जो है फिर आखिरत में भी उनकी ख्वाहिशात जो हैं उनको ले डूबेंगी और वो लोग जो हैं वो तबाहो बर्बाद होकर रह जाएंगे, कोई चीज जो है फिर इनके काम ना आ सकेगी। तो अब अल्लाह का कॉल क्या है कि अब ये दोजख में जाएंगे अपने इन आमाल की वजह से। तो अल्लाह के अजाब का वादा पूरा होकर रहा, और ये वादा तो अल्लाह ने पहले जिनों और इंसानों से भी किया था, और उन जिनों और इंसानों पर अल्लाह का ये वादा पूरा हुआ, तो जिन्हों की जमातें और इंसानों की जमातें यानी गोया पूरे पिछले तमाम लोग जो काफिर थे उनको अल्लाह ताला जो है वो आग में डालने वाला है। इन्नहुम कानु खासिरीन, और बेशक यही लोग हैं जो के खसारे में जाने वाले हैं। वकालल्लज़ीना, और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कफरू कुफर किया, और उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया उन्होंने कहा, क्या कहा, ला तस्माऊ ना सुनो, लिहाजल कुरानी इस कुरान को, कि इस कुरान की बात मत सुनो, वल्गौ फीही काफिरों ने जो है वो दो बातें कही, पहली क्या कि ला तस्माऊ लिहाजल कुरानी के इस कुरान को ना सुनो, और दूसरी बात क्या कि जब कुरान पढ़ा जाए वल्गौ फीही तो खूब शोर मचाओ, लअल्लकुम तगलिबून इस तरह शायद तुम गालिब हो जाओ। तो आप देख लीजिए कि अहले मक्का जो थे वो क्या करते थे, उन्होंने कुरान के बारे में तीन इकदाम किए थे। पहला क्या करते थे, पहला उनका जो है जो उन्होंने कदम उठाया वो ये था कि मुसलमानों पर पाबंदी थी कि कुरान को ऊंची आवाज से मुसलमान पढ़ ही नहीं सकते। उन्होंने देखा कि कुरान की तासीर से दिन ब दिन इनकी औरतें इनके बच्चे और लोग जो है मुसलमान होते जा रहे हैं, तो इन्होंने पहला कदम ये उठाया कि मुसलमान कुरान को ऊंची आवाज में मत पढ़ा करें। और इसीलिए खुद रसूल अल्लाह पर भी कई हमले किए कि ऊंची आवाज से जब आप तिलावत कर रहे थे, अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह को भी खूब एक दफा पीटा गया। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह का भी ये जुर्म था कि वो कुरान की तिलावत करते हैं और लोग जो है वो मशहूर हो जाते हैं, तो उनको जो है वो मजबूर कर दिया गया, यहां तक कि आप हिजरत की गरज से निकल खड़े हुए। आप बरके गमात के मकाम पर पहुंचे तो कबीला कारा का सरदार इब्ने दगना, दाल गैन नून और हा, दुगना या दगना, उन्हें अपनी पनाह में लेकर वापस मक्का आया, क्योंकि हजरत अबूबकर सिद्दीक रजी अल्लाह जा रहे थे हिजरत करके, और बहुत आप जो थे वो शुरफा में शामिल होते थे, अमीर सरदार साहिब नस्ब हसब नसबा बहुत जानने वाले थे, बड़े ही कदरों इज्जत की निगाह से आपको देखा जाता था, अतीक भी आपका एक लकब था, सिद्दीक भी आपको जैसे दिया गया। तो बहरहाल उसको ये अच्छा नहीं लगा कि इतना शरीफ शख्स और मक्का को छोड़ के जा रहा है, तो कहा कि नहीं मैं आपकी जो है वो जिम्मेदारी लेता हूं, अपनी अमान में आपको लेता हूं, और पनाह में आपको अपनी में लेकर अब मक्का वापस ले आया। अब सरदारान कुरैश ने इस पनाह को सिर्फ इस शर्त पर मंजूर किया कि आप कुरान को ऊंची आवाज में नहीं पढ़ेंगे, बुलंद आवाज से आप कुरान नहीं पढ़ सकते, तो पनाह है वरना फिर नहीं। मगर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह के बारे में आता है कि आगे और फिर इस शर्त को पूरा ना कर सके, रह ना सके, कुरान की तिलावत जो थी ऊंची ऊंची आवाज में करने लगे बेखुद होकर। और फिर अब जो है मक्का के सरदारों ने इब्ने दगना के पास जाकर शिकायत की, तो अब ये इब्ने दगना जो था इसने दोबारा अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह से आकर कहा कि आपने तो वादा किया था और अब आप इसको पूरा कीजिए, और अगर तुम बरसरे आम कुरान बुलंद आवाज से पढ़ना नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हारी पनाह से जो है ना दस्तबरदार होता हूं, जो मैंने अमान ली है ना तुम्हारी जिम्मेदारी मैं इसको फिर वापस लेता हूं, या तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। इसके जवाब में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह उन्होंने फरमाया तुम अपनी पनाह अपने पास रखो और मेरा मामला अल्लाह के सुपुर्द है। ये बुखारी की रवायत है। कहा कि जाओ मुझे तुम्हारी पनाह की कोई जरूरत नहीं, और इनकी पनाह जो है वो वापिस कर दी। तो इसको इस्तकामत कहते हैं ना। ये था पहला कदम अहले मक्का का कि ऊंची आवाज में लोग कुरान नहीं पढ़ सकते। दूसरा कदम क्या था, उन्होंने ये पाबंदी लगा रखी थी आपस में भी कि वो जानबूझकर कुरान नहीं सुनेंगे, अमदन कुरान नहीं सुनेंगे। वो ऐसी पाबंदी थी कि जिसे पाबंदी लगाने वाले सरदार भी निभा ना सके। जैसे अबू जेहल के बारे में भी आता है कि एक रात काबा में खड़े होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुलंद आवाज से कुरान पढ़ रहे थे और तीन कुरैशी सरदार एक दूसरे से छुपते छुपाते आपका कुरान सुन रहे थे, जिसमें अबू जेहल भी था, एक दफा हजरत उमर का नाम भी मिलता है, उस वक्त आप ईमान नहीं अभी लाए हुए थे, तो अब ये कुरान सुन रहे थे। अब बाद में क्या हुआ कि कुरान सुनकर जब गए ना तो रास्ते में एक दूसरे को मिल गए, तो अब तीनों बड़े शर्मिंदा, क्योंकि तीनों ही रात का वक्त था, कुरान सुनकर आए थे। अब आपस में ये वादा किया कि कोई भी आइंदा कुरान नहीं सुनेगा। और उसके बाद क्या हुआ कि अब अगली रात जो है ना, फिर तीनों वहीं मौजूद थे और पर्दे, खाना काबा का जो पर्दा है ना, गिलाफ, उसके अंदर छुप कर सुन रहे थे। अब फिर निकले और फिर मुठभेड़ हो गई, बहुत शर्मिंदा। वो ऐसी तासीर थी कुरान की कि खुद ब खुद कदम उसकी तरफ जो थे वो उठ जाते थे। तो बहरहाल अबू जेहल के बारे में भी आता है कि जब ये बात हुई कि भी दिल से कहने लगे कि बात तो जो सुनी है वो सही है, दिल मान चुका था, जबान से इनकार कर रहे थे। तो अबू जेहल ने कि कुरान जो तुमने सुना है तुम्हारा क्या ख्याल है, आपस में पूछ रहे थे ना कि कैसा लगा। तो अबू जेहल ने जो है सही जवाब देने की बजाय ये कहा कि असल में बनू मखजूम, ये बनू मखजूम में से था कि बनू मखजूम और बनू अब्दे मनाफ, हम सब बातों में बराबर थे। अब इनमें से जो है इनमें नबी आ गया, अब नबी चूंकि इनमें आ गया तो हम इनकी बर्तरी को अपने ऊपर कैसे तस्लीम कर लें। तो कुरान की तासीर से वो मुतासिर हो चुका था, लेकिन कबाइली रकाबत की वजह से और तकबर की वजह से उसने आपको मानने का इनकार किया। तो दूसरी वजह क्या थी कि आपस में भी उन्होंने कुरान को सुनने पर पाबंदी लगा रखी थी। तीसरी बात और थी, और तीसरी क्या बात थी, वल गौ फी ही जो है ये फजूल बातें करना के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लाम गैन वो, लग भी इसी से है ना, बेहुदा कलाम को कहते हैं। कुत्ते की आवाज के लिए भी ये लफ्ज़ आता है, चिड़िया की आवाज के लिए भी आता है, क्योंकि चिड़िया और कुत्ता बेमौका शोर करते हैं ना, बस ऐसे ही पत्ता खड़का और इन्होंने भौंकना शुरू कर दिया जैसे कुत्ते ने, या चिड़िया जो है बाजूकात बहुत ज्यादा इसकी बेमौका चहचहाट होती है और समझ में नहीं आती कि बाजूकात सुबह काजिब होती है और ये चहचहा रही होती है, सुबह सादिक नहीं होती। तो बगैर मौके के भी ये क्या करते हैं कि ये जो है ये चहचहाते हैं या ये भौंकता है जैसे कुत्ता। तो अब यहां पर जो ये बात कही गई कि वल गौ फीही, तो इसके मानी क्या है कि यहां ये लफ्ज जो है बक बक के मानी में है, शोर करने के मानी में है। और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ने तो कहते हैं ये लफ्ज जो है वल गौ फीही अय्याबू के मानी में है। क्या मतलब, कुरान और साहिब कुरान पर ऐब लगाओ और इस तरह लोगों को इससे दूर कर दो। और याद रखिएगा कि छह लफ्ज आए हैं कुरान में फजूल बातों के लिए और ये पहला दर्जा है। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि इस पर ऐब लगाओ, तो ऐब कैसे लगाया जाता है, कहते हैं कि ऐब आमतौर पे कोई भी बात होती है तो उसके इजहार राय के दो तरीके होते हैं ना, एक तो इंसान तनकीद करता है दलाइल के साथ, तो अहले मक्का दलाइल के साथ तनकीद नहीं करते थे, उनके पास कोई हकीकत तो थी नहीं, हकायक तो थे ही नहीं। अब वो क्या करते थे, तईब करते थे, ऐब निकालते थे क्या। और अहले कुफर का हमेशा ये तरीका है कि दलाइल की बजाय क्या करते हैं कि ऐब निकाल निकाल कर जो है वो बात को झुटलाते हैं और कुफर करते हैं। وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, काफिरों ने कहा, لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ, कि इस कुरान को नहीं सुनो, وَالْغَوْا فِيهِ, और इसमें जो है ऐब चीनी करो, शोर मचाओ, ताकि कुरान की आवाज जो है वो लोगों के कान में ना पड़े। और आमतौर पे ऐसे होता था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको समझाने लगते तो ये क्या करते कि बाहर खड़े होकर जो है वो शोर मचाना शुरू कर देते। गुल गपाड़ा करना, तालियां बजाना, और इतना शोर मचाते कि कान में जो है वो कुरान की आवाज आने ही ना पाए। मसलन आप देखें कि बाज़ औक़ात ऐसे लोगों का शोर मचाना भी कैसे होता है, जैसे मच्छर होते हैं कि मच्छर जैसे एक उनकी आवाज सी आती है ना हमला करने के लिए, बिन बिनाहट जिसे कह सकते हैं, या कड़क, इसी तरह मक्खियों की बिन बिनाहट। लेकिन मक्खियों की बिन बिनाहट हो या मच्छरों की कड़क हो, इससे सदाकत जो है वो कभी मغلوب नहीं हो सकती। इन तदबीरों से हक की आवाज जो है वो कुलूब की गहराइयों तक पहुंचने से रुक नहीं सकती। तो इन्होंने जो है ये तदबीर जो है वो इख्तियार की। अच्छा, ये एक तो है कि काफिरों का शोर मचाना है ना। अब दूसरा यहां पर जो बड़ी खास बात है वो ये है कि मुसलमान भी तो शोर मचाते हैं ना, है ना। यहां पे हमें ये भी देखना चाहिए कि कुरान मजीद हमें ये कह रहा है कि कुरान मजीद का अदब और एहतराम होना चाहिए, और जब कुरान सुनाया जाए तो कुरान मजीद को अदब और एहतराम से सुनना चाहिए, शोर नहीं मचाना चाहिए, है ना। आप पहले भी ऐसी आयात को जो है वो पढ़ चुकी हैं। हाँ, वाइजा कोरियल कुरान, हाँ, फर्स्ट तमेऊ, तो जब कुरान जो है वो सुनाया जाए तो उसको तवज्जो से सुनो, खामोश हो जाओ। अनसितु, अनसितु का लफ्ज भी आता है और ये भी के तवज्जो से सुनो। तो गोया के कुरान मजीद जब भी हमारे सामने पेश किया जाए तो उसको तवज्जो से भी सुनना चाहिए और खामोश रहना चाहिए। मसलन जैसे आप क्लास में आती हैं, क्लास शुरू हो चुकी है, तो क्या करना चाहिए? फिर कुरान की जो क्लास है, हत्ता के सलाम भी नहीं करना चाहिए, खामोशी से आकर बैठ जाना चाहिए। इसी तरह जैसे आपकी जो क्लास होती है, इसकी तिलावत, इसकी कैसेट सीडी ऑन होती है, उस वक्त वो बातें करने का वक्फा नहीं होता, क्योंकि बाज औकात बाज लोग क्या करते हैं, बातें करनी शुरू कर देती हैं। तो क्या करना चाहिए? कुरान की तिलावत को जो है वो खामोशी से सुनना चाहिए, है ना। तो कहीं भी कुरान का दर्स हो रहा है, कुरान की महफिल हो रही है, जिक्र की महफिल हो रही है, खामोशी से अदब के साथ वहां बैठकर जो है वो उसको सुना जाए और उसकी उस पर जो है वो गौर किया जाए। तो असल में ये अहले मक्का का तरीका था और उसमें से भी काफिरों का तरीका था कि वो कुरान के वक्त जो है वो खामोश नहीं होते थे। अच्छा, यहाँ आजकल ये भी रिवाज है कि क्योंकि कैसेट सीडी बहुत आम है, अक्सर घरों में वो लगी हुई होती है तिलावत और लोग बातें कर रहे होते हैं। आप किसी होटल रेस्टोरेंट में जाएं, तिलावत लगी हुई है लेकिन साथ साथ लोग बातें कर रहे हैं। रेडियो टीवी पर कुरान के अच्छे प्रोग्राम आ रहे हैं और साथ साथ जो है लोग बातें कर रहे हैं। तो एक बात याद रखें कि ये काफिरों की निशानी और अलामत है कि कुरान की बेहुर्मती है, ये भी कि कुरान की तिलावत भी हो रही है, कुरान का दर्स भी हो रहा है और साथ साथ बातें की जा रही हैं। तो क्या करें कि जब भी कुरान की महफिल में हो या तिलावत कुरान के लिए जो है वो टीवी रेडियो ऑन किया हुआ है, कैसेट सीडी लगी हुई है, गाड़ी के अंदर हैं आप, अक्सर लोग गाड़ी का सफर करते हैं, तो दो काम करें, या तिलावत ऑन कर ली है, दर्स हो रहा है, फिर खामोशी से सुने, या फिर ये कि उसको बंद कर दें अगर हम बातें कर रहे हैं, बंद कर दें और जब बातें खत्म हो जाए फिर उसको ऑन कर लें। इसी तरह मसलन आपने कुरान खोल लिया है, आप कुरान पढ़ रही हैं, मैं कुरान पढ़ रही हूँ, बीच में कोई बच्चा आ गया, कोई फोन आ गया है, अब हमने बातें शुरू कर दी, कुरान खुला हुआ है, तो क्या करें कि ऐसे मौके पे भी जो है वो चंद मिनट के लिए कुरान को बंद करके हम, अगर वो जरूरी बात है तो उसको सुन लें, वरना बेहतर ये है कि अपना वो खत्म करके फिर ही हम उस तरफ मुतवज्जो हों। तो असल बात क्या है कि ये आयत हमें कुरान का अदब, एहतराम और इसको तवज्जो से सुनना बता रही है। और याद रखिएगा कि अमल जो है ये बहुत बाद में आता है, पहली चीज जो होती है ना अस्मा होता है, इस्तमा, पहली चीज होता है तवज्जो के साथ सुनना, और अक्सर लोग सुनते नहीं है। इल्म के पांच दर्जे हैं ना, इल्म के पांच दर्जे हैं। मैंने पहले दिन जो क्लास पढ़ाई थी, पहले दूसरे दिन उसने ये बात बताई थी, ये फुजैल बिन अयास का कॉल है कि इल्म के पांच दर्जे हैं। पहला दर्जा यह इंसान खामोश रहना सीखे। आप कब कोई चीज सुन सकते हैं? जब खामोशी हो, दो लोग सुन रहे हैं, दो लोग बातें कर रहे हैं, तब भी नहीं कुछ पल्ले पड़ता। तो पहली चीज खामोश रहना सीखे, दूसरी चीज तवज्जो से सुने, तीसरी चीज जो सुने उसको याद रखे, चौथी चीज जो सुने उस पर अमल करे, और पांचवी चीज फिर उसको फैलाए। आगे बढ़ा दे, अशात करे। तो ये है इल्म के 5 दर्जे। तो हमारी बीमारी यह है कि हमारे अंदर समात नहीं है। जिसके अंदर समात जितनी खूबसूरत होती है और बेहतरीन होती है ना, उतना ज्यादा वो अमल में आगे होता चला जाता है। तो यहाँ पे भी फरमाया, काफिरों ने ये सोचा कि कुरान को सुना ही ना जाए और इतना शोर किया जाए, तो फिर फायदा क्या चाहते थे, लअल्लकुम तग्लिबून, शायद इस तरह तुम गालिब हो जाओ। फलानुज़ीकन्नल्लज़ीन कफरू, हमको जरूर मजा चखाना है उन लोगों को, कफरू, जिन्होंने कुफर किया, किस चीज का, अजाबन शदीदन, सख्त अजाब का। वला नज़ीअन्नहुम, और जरूर बजरूर इनको बदला देना है, अस्वा अल्लज़ी, बुरे से बुरे कामों का। अस्वा जो है यहाँ पे क्या है, ये भी इसम तफजील है, तो अफलु तफजील का सीगा है, और इसके मानी ये हैं कि जितने भी वो बुरे काम करते थे, तो बुरे से बुरे कामों का हमने इनको क्या करना है, बदला देना है। गोया के वो सैयाद करते थे, तो सैयाद का सूर नहीं बल्कि अस्वा जो है वो जवाब है, कि बुरे से बुरे कामों का जो वो करते थे, बुरा तरीन बदला जो है अब उनको दिया जाने वाला है, बदतरीन अमाल का बदला हम जरूर बजरूर देंगे। तो अस्वा जो आया है ना, किस लिए आया है, उनके अमाल की जजा के लिए आया है, कि अल्लाह ताला जो उनके अमाल की जजा देंगे तो बहुत बुरी जजा देंगे, क्योंकि उनका अमल जो था वो बहुत ही बुरा था। तो आप देख लें कि जैसे अमल होते हैं वैसे ही उसके मुताबिक सजा या जजा जो है वो दी जाती है। तो दुनिया में लोगों को अंदाजा ही नहीं हो रहा कि दुनिया में लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं। तो कयामत के दिन जब लोगों के अमाल की जजा या सजा उनके सामने आएगी, तब उनको पता चलेगा कि अमाल के असरात जो है उनका हाता तो दुनिया ही में नहीं बल्कि आखरत तक में है, और मरने के साथ खत्म नहीं होता बल्कि मरने के बाद भी अमाल के असरात जो है वो बाकी रहते हैं। तो ये आयतें जो हैं इस लिहाज से बड़ी अहम आयतें हैं, और हमें भी अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए कि हम जो हैं वो क्या करते हैं, है ना। तो बुरे लोगों का काम क्या है, कि उनकी जजा भी बहुत ही बुरी है और वो बुराइयां करते हैं और बुरे ही उनके दोस्त बन जाते हैं। ज़ालिका जज़ाउ, ये है बदला, किस चीज का बदला है, आदा इल्लाहिल नार, आदा इल्लाहिल नार, तो अदू से है, दुश्मन के लिए आता है, और आदा उसकी जमा है, तो अल्लाह के दुश्मनों का बदला फिर क्या है, अन्नार, आग है। बड़ा बुरा बदला है, बड़ा सख्त बदला है जो अल्लाह के दुश्मनों को मिलेगा। लहुम फीहा दारुल खुल्द, इनका इसी में रहना है हमेशा के लिए। क्या फरमाया, कि हमेशा के लिए अब ये इनका घर है, दारुल खुल्द है, यही दारुल करार है इनका। जज़ाअम बिमा कानू बिआयातिना यजहदून, ये बदला है इसका जो हमारी बातों से इनकार करते थे। अब आप यहां पे यजहदून जो है, इनकार कौन सा वाला इनकार है, कि दिल से मानना, जबान से इनकार करना, मैंने अभी आपको अबू जहल की मिसाल भी दी, और जब यजहदून के साथ जीम हा दाल के साथ बा की प्रेपोजिशन आ जाए, सिला जाए, तो माने क्या होते हैं, मजाक करना, इस्तेहजा करना। तो असल बात क्या है, कि ये इनका जो है वो, ये जो इस्तेहजा है, यानी झुटलाना के फिर मानी में आता है ना, कि ये इनका इस्तेहजा था, ये इनका झुटलाना था, ये है बदला दारुल खुल्द जहन्नुम की शक्ल में। وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, और कहेंगे वो लोग जो मुनकिर हैं, जिन्होंने कुफर किया, रब्बना, ए हमारे रब, अरिना, दिखा हमको, अल्लज़ीना, उन लोगों को, अदल्लना, जिन्होंने हमको बहकाया, जिसकी वजह से हम अपने रास्ते को भूल गए, वो लोग हमें दिखा, मिनल जिन्नी वल इंसी, वो जो जिन हैं और वो जो आदमी, नजअल हुमा, हम उन दोनों को कर दें, हुमा की ज़मीर आई है जिन और इंस के लिए, और आपको पता है जिन और इंस इस्म जिन्स भी हैं, एक भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, वाहिद भी हो सकती है, जमा भी हो सकते हैं, तो हम इन्हें क्या कर दें, नजअल हुमा, हम इन दोनों को कर दें, ताहता अक़दामिना, अपने पांव के नीचे, हम इन जिन्नों और इंसानों को, जिनकी वजह से हम जहन्नुम तक पहुंच गए और हमने बुराई इख्तियार की, जिन्होंने हमें जो है वो सब्ज बाग दिखाए, बुराइयों को खुशनुमा बनाकर दिखाया, जो हमारे इर्द गिर्द रहते थे और हमें कहते थे करो करो चोरी और डाका और कत्ल करो, कोई मसला नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह ताला अब हमें दिखा उनको, क्यों हमें दिखा, ताकि अपने पाओ के नीचे कर दें। तो पाओ के नीचे करने का मतलब क्या है कि उनको पाओ के नीचे लाकर कुचल दें, रूंद डालें, उनको पाओ के नीचे लाकर खत्म कर दें। अब वो बड़े जहन्नुम है, सजा है, अजाब है, और अब वो चाहते हैं कि किसी तरह वो इनको अपने पाओ के नीचे लाकर जो है वो रूंद डालें। तो कहां है वो लोग, अल्लाह अब हम उन्हें कदमों के नीचे ला कर रखना चाहते हैं, तूने हमारे बता हमें दिखा ताकि हम उन्हें अपने कदमों के तले डालकर क्या करें, ऐसे रूंदे ले यकूना, असल में ले यकूनाने था, ताकि वो हो जाएं, दो के लिए ना तस्निया के लिए, मिनल असफलीन सबसे नीचे, ऐसे उन्हें कदमों के नीचे रूंदे जलीलो खार कर दें। तो जहन्नमियों को अपने लीडरों पर बड़ा गुस्सा आएगा, हालांकि दोनों ही मुजरिम हैं। कुरान तो कहता है कुल देव वला किल्ला तालमून, सूरत आराफ में आप ये बात पढ़ी चुकी हैं कि दोनों के लिए जो है वो दुगना है, इसलिए कि एक ने बहकाया और दूसरा बहका, सूरत आराफ आयत 38। अब दोनों को जो है ये बदला तो मिलकर रहना है, लेकिन उस वक्त जो है वो ये बात कहेंगे। तो इससे क्या बात पता चलती है, ये जिन और इंसान से कौन मुराद है इस सिलसिले में, एक राय तो ये है कि जिन और इंसान से मुराद इंसानों और जिनों में से वो लोग हैं जो कि बुरे रास्तों पर डालते हैं, एक भी हो सकता है और ज्यादा भी, ठीक है। दूसरे ये कहते हैं कि जिन से मुराद इबलीस है, कैसे, इबलीस ने कुफर की इब्तदा की, इंसानों में जिनों में से इबलीस है और इंसानों में से कौन है जिसने सबसे पहले कत्ल किया, काबील। काबील मैंने आपको पहले दिन याद बताया था, काबील से कत्ल याद रखें, काफ काबील का और कत्ल का, तो काबील ने कत्ल किया था। इंसानों में सबसे पहले जो है वो अपने भाई हाबील को जिसने कत्ल किया वो काबील है। तो बात कहते हैं कि दुनिया में जितने भी कातिल हैं वो क्या कहेंगे जब अजाब मिलेगा कि काबील को लाइए, उसने इब्तदा की थी तो हमने भी फिर कत्ल कर दिया। तो बहरहाल तो वो जैसे ये मुराद लेते हैं, क्योंकि हर कत्ल के गुनाह का एक हिस्सा काबील को मिलता रहेगा, इसी तरह कुफर का, किब्र का और गुनाहों को दिलफरेब बनाकर दिखाने का हिस्सा जो है वो इबलीस को मिलता रहेगा। तो बहरहाल जो भी लीडर और रहनुमा है बुराइयों का, तो वो उसको मांगेंगे और उनको चाहेंगे। अब आप देखिए कि यहां तक तो बात हो रही थी करीन की, बुरे साथियों की और उनके अंजाम की, और बुराई में इंसान क्यों चला जाता है कि साथी बुरे होते हैं, बुरे काम क्यों करता है कि बुराई को खुशनुमा बनाकर दिखाते हैं, और क्यों हक के पास नहीं आने देते, कुरान को ना सुनना ना सुनने देना, ना नेक बनेंगे ना बनने देंगे, सुनो ही नहीं, तो उससे रोकना। तो नतीजा क्या है कि जब कुरान पढ़ेंगे नहीं तो ना बिदतें खत्म होंगी और ना ही गुनाह खत्म होंगे। फिर आप देखिए कि अगली जो आयत है आयत नंबर 30 से अल्लाह ताला एक दूसरा जो ग्रोह है इसका जिक्र करते हैं, ईमान और ईमान के समरात बताते हैं। बड़ी खूबसूरत आयतें हैं, आयत नंबर 30 से आप देख लीजिए और 30 से लेकर 36 तक, और इसमें जो है ईमान जो लाने वाले हैं और फिर जो सच्चा ईमान लाते हैं, जीता जागता पारे की तरह हरकत करने वाला जिंदा, क्योंकि ईमान जमूत का नाम नहीं है, ईमान हरकत का नाम है। तो जिनके पास ऐसा ईमान होता है उसके 7 समरात बताए गए हैं। इन्नल्लज़ीन क़ालू, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा, ये दूसरा ग्रोह है जिन्होंने क्या कहा, रब्बुनल्लाह, अल्लाह हमारा रब है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर वो इस पर जम गए, फिर उन्होंने इस्तकामत इख्तियार की। तो कालू रब्बुनल्लाह का मतलब क्या है, जो ईमान ले आए, सुम्मस्तकामू, फिर इसके बाद वो मुस्तकीम हो गए। आप देख लीजिए कि ईमान और इस्तकामत, कहना कि अल्लाह हमारा रब है, और एक होता है कि आप कोई बात कहती हैं तो ओपरे मुंह से कहती हैं, एक दिल की गहराइयों के साथ कहती हैं, जब दिल तक वो बात का असर होता है जो हमने जबान पे रखी हुई होती है उसका कुछ और ही बात होती है। तो यहां पे ربنا اللہ ثم استقاموا کے کیا معنی ہے؟ ایک مرتبہ سفیان ابن عبداللہ سقفی رحمت اللہ علیہ، بلکہ کہنا چاہیے رضی اللہ عنہ، کیونکہ صحابی تھے نا، حضرت سفیان جو تھے، سفیان بن عبداللہ، یہ رسول اللہ کے پاس گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دین اسلام کی ایک ایسی جامع بات بتا دیجئے جس کے بعد مجھے کسی اور سے نہ پوچھنا پڑے. آپ نے فرمایا، کہو امنت باللہ ثم استقم. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر جم جاؤ. اور جمنے سے مراد کیا ہے؟ ایمان پر اس قدر مضبوطی سے ڈٹ جاؤ کہ ایمان کے ہر تقاضے اور عمل صالح کو اختیار کرتے چلے جاؤ، اور یہ تمہارا مزاج بن جائے، عادت بن جائے. بعض کام ہم عادتن کرتے ہیں، عادتن، تو ایمان کے اور نیکی کے کام کرنا تمہاری عادت بن جائے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے اور سلف صالحین نے استقامت سے کیا مراد لیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے، ان سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ ثم مستقیم کا کیا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا، توحید کا اقرار کرنے کے بعد کوئی گناہ نہ کرے، ہے نا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے دین کو ایک مشکل بات بنا دیا. لوگوں نے عرض کیا، آپ ہی اس کا پھر مطلب بتائیے. فرمایا، توحید کا اقرار کرنے کے بعد پھر بت پرستی اور شرک کو اختیار نہ کرنا. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ والی وہ بات تو میں آپ کو بتا ہی چکی کہ توحید کے اقرار کے بعد منافقت نہ کی جائے، لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہ جایا جائے، موقع پرست، مطلب پرست، حریص نہ بن جایا جائے، لومڑیوں کی طرح بھاگنے کے راستے تلاش نہ کیے جائیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس سے مراد اخلاص عمل کے لیے ہیں، ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنا. اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا، تفسیر بصری میں یہ بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم پر قائم رہ کر اس کی اطاعت کرنا اور اس کی ہر طرح کی نافرمانی سے بچنا. اچھا، تفسیر کشاف میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ انسان کا ربون اللہ کہنا جو ہے تبھی درست ہو سکتا ہے جب وہ دل سے یقین کرے کہ میں ہر حال اور ہر قدم پر اللہ کی زیر نگرانی تربیت حاصل کر رہی ہوں، کر رہا ہوں. جیسے ایک سانس بھی اس کی رحمت کے بغیر نہیں آ سکتی، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی بندگی اور عبادت کے طریقوں پر اس طرح استقامت کے ساتھ جمع رہے کہ قلب اور قالب، قلب کیا ہے، دل، اور قالب کیا ہے، بدن، جسم، کہ دل اور جسم دونوں اس کی عبادت اور بندگی سے بال برابر بھی ادھر ادھر نہ ہو. سمجھ آئی؟ کیونکہ دل جب ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو جسم بھی ہو جاتا ہے، نہ دل ہو اور نہ ہی جسم ادھر ہو. تو استقامت اس کا مطلب کیا ہے کہ بالکل جو ہے وہ جم جانا، ٹک کر کھڑے ہو جانا، سیدھا کھڑے ہونا. اس میں دو چیزیں آتی ہیں، اس کو آپ نوٹ کر لیں استقامت میں، ایک ہے اسٹریٹ اور دوسرا ہے فکسڈ. اسٹریٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالکل سیدھا. اور دوسرا کیا ہے فکسڈ کا؟ کہ ڈھیلا نہیں پھر ہونا، سیدھا تو ہوئے پر کچھ دیر نہیں ہونا، ہمیشہ جو ہے وہ پھر سیدھا رہنا ہے. تو یہ ایمان اور استقامت جو ہے یہ بڑی چیز ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے. اور پھر اس کے کیا ثمرات ہیں؟ سات ثمرات ہیں. پہلا ثمرہ کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ، کہ اترتے ہیں پھر ان پر الملائکہ. اب آپ دیکھیں کہ تنزل ہوتا ہے ایک دفعہ اترنا، اور تتنزل اترتے رہتے ہیں، ثلاثی مزید کا باب یہاں پر آیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک ہوتے ہیں سہ حرفی ہوتے ہیں نا، بعض روٹ جو ہوتے ہیں فیل سہ حرفی ہوتے ہیں، بعض سلاسی بھی سلاسی ہیں، اور بعض ہوتے ہیں سلاسی مزید، سلاسی میں مزید ایک اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا روٹ تین حرفی نہیں ہے، چار حرفی ہے، زیادہ والا ہے، سلاسی مزید، تین میں مزید کا اضافہ ہو گیا. تو تتنزلو اترتے رہتے ہیں، علیہم ان پر، علیہم کن پر، ایمان لانے والے اور استقامت اختیار کرنے والے، ان پر اترتے رہتے ہیں. کون؟ الملائکہ. اور آپ جو ہیں آپ پڑھ چکی ہیں سورہ شعراء آیت 221 سے 223 تک، آپ یہ بات پڑھ چکی ہیں کہ جو شیطان ہے ان پر کون اترتا ہے؟ تنزل علی کل افاق اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبین، ہے نا. वहां पे आप देखें सूरह शोरा में कि हल उनब्बियकुम अला मन तनज्जलु शयातीन, के बताएं कि किस दिल पर शैतान उतरते हैं। तनज्जलु अला कुल्ली अफाकिन असीम युल्कून असमा व अक्सरहुम काज़िबीन। तो आयत 221 से 223 ये आप पहले भी पढ़ चुकी हैं। तो शैतान तो उतरते हैं बुरे लोगों पर, अफाक और असीम पर, झूठे और गुनागार पर उतरते हैं। और झूठे गुनागार कौन होते हैं? काहिन, नजूमी, बुरे किस्म के लोग, और वो झूठी बातें मिलाकर इनको बताते हैं। तो नेक लोगों पर कौन उतरते हैं? फरिश्ते उतरते हैं। अच्छा, फरिश्ते कब उतरते हैं? नंबर एक, मौत के वक्त फरिश्ते आते हैं ना, मौत के वक्त आते हैं। नंबर दो, कब्र में, कब्र में फरिश्ते आते हैं। नंबर तीन, कब्र के दोबारा उठने के वक्त। तीन औकात है मुफस्सरीन ये कहते हैं कि फरिश्ते इनके पास आते हैं। और वैसे तो जैसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में गज़वाए बदर में भी और कई मौकों पर हमें मिले, पता चलता है ना, यानी हमें मिले से मुराद कि हमें सीरत में ये बात पता चलती है कि फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह ने नाजिल किए। तो अब जरूरी नहीं कि सहाबा को नजर आ रहे थे। तो फरिश्ते क्यों उतरते हैं? ये तसल्ली देते हैं आकर। क्या कहते हैं? नंबर एक, अल्लाह तखाफू, कि तुम खौफ नहीं करो। अब खौफ किस चीज का होता है? खौफ होता है फ्यूचर का, पेश आने वाले हालात का। तो तुम आखिरत के बारे में, कब्र के बारे में, जन्नत के बारे में, और आगे पुल सिरात से जो गुजरना है और जो भी हिसाब किताब है उसके बारे में बिल्कुल खौफ ना करो, क्योंकि तुम तो ईमान और इस्तकामत इख्तियार करने वाले। तो अल्लाह तखाफू, कि तुम खौफ नहीं करो। वला ताजनू, और फिर वो दूसरी उनको क्या बात कहते हैं? कि तुम गम नहीं करो। गम किस चीज का होता है? माजी का। याद रखिएगा, आपने सूरत बकरा के पहले सबक में पढ़ा था, खौफ होता है फ्यूचर का और गम होता है माजी का, कि जो माल और दौलत तुम दुनिया में छोड़ आए उसका कुछ गम नहीं करो। तो ये बशारत देते हैं, उनको तसल्ली देते हैं। और तीसरा समरा क्या है? अब शिरु बिल जन्नती, और वह अब शिरु, और बशारत सुन लो उस जन्नत की, अल्लती कुन तुम तू अदून, जिस जन्नत का तुमसे वादा किया गया। तो अब इस जन्नत की खुशखबरी भी सुन लो जिसका तुमसे वादा किया गया। तो इससे जो है फिर हमें क्या बात पता चलती है कि यहां पर जो है एक आयत में जो है वो तीन जो है ईमान और इस्तकामत के समरात आए हैं। नंबर एक, फरिश्तों का उतरना। नंबर दो, फरिश्तों का तसल्ली देना, फरिश्तों का इत्मीनान दिलाना, और उनको ये बात कहना कि तुम गम ना करो। गोया कि जब भी दुनिया में आप नेकी के काम पर चलना चाहती हैं ना, आप शिर्क से और बिद्दतों से और बुराइयों से दूर रहना चाहती हैं, तो होता क्या है कि बहुत से मौके ऐसे होते हैं कि आप बिल्कुल तन्हा रह जाते हैं, कोई आपके साथ नहीं होता, हत्ता कि अपने करीबी लोग भी साथ देने को तैयार नहीं होते। तो ऐसे में क्या होता है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को नाजिल करते हैं। फरिश्ते क्या करते हैं? दिल बंधाते हैं, ढारस देते हैं, तसल्ली देते हैं, और आपकी नेकी पर जो है वो एतमाद और इस्तकामत बढ़ जाती है। आप कहते हैं कि नहीं, टंकी की चोट पर यही बात कहनी है, यही बात करनी है। जैसे बाज़ुकात आप जब काम कर रहे होते हैं तो आपके अंदर से दिल से एक आवाज आती है कि नहीं नहीं यही रास्ता सच्चा है, अकेला हूं मैं, तन्हा हूं मैं, कमजोर हूं, तो फिर क्या हुआ? लेकिन करना यही है जो कि मेरे अल्लाह को पसंद है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी सच्चे दिल से ईमान लाया जाता है और इस्तकामत इख्तियार की जाती है, सीधा मुंह अल्लाह की तरफ करके सिरात मुस्तकीम पर लोग जब चलते हैं, तो फिर नतीजा क्या होता है कि फिर जो है फरिश्ते भी खुशखबरी देते हैं और फरिश्ते तसल्ली देते हैं। और उनकी जो खुशखबरी है वो कौन सी खुशखबरी है? उनकी खुशखबरी जो है वो जन्नत की खुशखबरी है। तो गोया के पहले ईमान है, फिर इस्तकामत है, फिर उसके साथ जो है वो फरिश्तों का तसल्ली देना है, और नंबर दो जो है उनका फरिश्तों का उतरना और फरिश्तों का तसल्ली देना, और नंबर तीन जो है वो जन्नत को लाकर सामने पेश कर देना कि जन्नत जो है वो मिलने वाली है, और ये वो जन्नत है जिसका तुमसे जो है वो वादा किया जाता है।